சச்சிதானந்தரூபாய விஸ்வோத்பத்யாதிஹேதவே தாபத்ரய விநாசாய ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய வயம் நம வியாசாய விஷ்ணுரூபாய வியாசரூபாய வைஷ்ணவே நமோ வை ப்ரஹ்மவிதயே வசிஷ்டாய நமோ நம வ்யாஸம் வசிஷ்டனஸ்து பாரம் புத்ர பௌத்ரம் அகல்மசம் பராசர மஜங் வந்தே சுகதாதம் தபோநிதிம் யம் ப்ரவ்ரஜந்தம் அனுபேத உபேத க்ருத்யம் தைபாயனோ விரஹ காதர ஆஜுஹாவ புத்ரீதி தன்மயதயா தரவோ சமுபீதௌஸ்தம் சர்வபூத ஹ்ருதயம் முனி மானூதோஸ்மி கோவிந்த 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 பிளிச்சே கோவிந்த 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 வந்தே தோ சரணாரவிந்த யோகே கரந்தி ஜாரே த்யான ஹரயி பராபவமான அவிஷ்ட ஃபல கமதேனு தீர்த்த நிர்கத துச்சரணு சேரேணு படு மோர முண்டே தொகுண காயே பதே பதே தொகுண காயே பதே பதே ஜன்மாதியஸ்யதன்னயயாதிதரதஸ்வபிஜ்ஞஸ்வராஸ்தேனேப்ரஹ்மஹ்ருதயாதிகவயேமுஹ்யந்தியதசூரயோ தேஜோவாரீமிருதங்யதவினிமயயத்ரத்ரிஸ்வரகம்ருஷா த்யாம்னா ஸ்வேன சதா நிரஸ்தகுஹகம் சத்யம் பரம் தீமஹி நிகம கல்பதரோருகளிதம் ஃபலம் சுகமுகாத அம்ருதம் த்ரவ சஞ்சுக்தம் பிவத பாகவதம் ரசமாலயம் முஹுரஹுரசிகா புவி பாவுகா ஓம் ந வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவிம் சரஸ்வதிம் வ்யாசம் தத்தோ ஜய முதிரே முகம் கரோதி வாசாலம் பங்குங் லங்கயதே கிரிம் யத் க்ருபா த்வமஹம் வந்தே பரமானந்த மாதவம் கிரந்தராஜ ஸ்ரீமத் பாகவதம் கீ ஜய். ஸ்ரீமத் பாகவதம் சப்தம ஸ்கந்த தஸ்வா அத்யாய் ஸ்லோக் நம்பர் 3. த்ருத்ய லக்ஷண ஜிஜ்ஞாசு த்ருத்ய லக்ஷண ஜிஜ்ஞாசு பரபக்தம் காமேஸ்வசோதயேத் பரபக்தம் காமேஸ்வசோதயேத் பவன் சம்சார விஜேஷு ஹ்ருதய க்ரந்திஷு பிரபு ஹ்ருத்ய லக்ஷண ஜிஜ்ஞாசு பரபக்தம் காமேஸ்வசோதயேத் பவான் சம்சார விஜேஷு ஹ்ருதய க்ரந்திஷு பிரபு. മത്തായി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ട് ബൈ ഹിസ് ഡിവൈൻ ഗ്രേസ് എസ് ഇ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ് ഹോ. ഹേ മേരേ ആരാധ്യ ദേവ്, ക്യൂക്കി ഹർ എക് കേ ഹൃദയ മേ ഭൗതിക സംസാര കേ മൂൽ കാരണ കാമേച്ഛാഓ കാ ബീജ രഹതാ ഹൈ. അതേവ് അപ്നേ മുഝെ ഇസ് ഭൗതിക ജഗത് മേ ശുദ്ധ ഭക്ത കേ ലക്ഷണ പ്രകട കർനെ കേ ലിയെ ഭേജാ ഹൈ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് കഹതെ ഹൈ, താത്പര്യ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു മേ നിത്യ സിദ്ധ തഥാ സാധന സിദ്ധ ഭക്തോ കേ വിഷയ മേ പര്യാപ്ത വിവേചന ദീ ഹുയി ഹൈ. നിത്യ സിദ്ധ ഭക്ത ഈ സംസാര മേ അപ്നെ ഉദാഹരണ ദ്വാരാ ഭക്ത ബന്നെ കീ ശിക്ഷ ദേനെ കേ ലിയെ വൈകുണ്ഠ ലോക സേ ആതെ ഹൈ. ഇസ് ജഗത് കേ ജീവ ഐസേ ഭക്തോ സേ ശിക്ഷ ഗ്രഹണ കർത്തെ ഹൈ ഔർ ഇസ് തരഹ ഭഗവത് ധാമ ജാനെ മേ രുചി ഉത്പന്ന കർ സക്തെ ഹൈ. നിത്യ സിദ്ധ ഭക്ത ഭഗവാൻ കേ ആദേശ മേ വൈകുണ്ഠ ലോക സേ ആതാ ഹൈ ഔർ അപ്നെ ഉദാഹരണ ദ്വാരാ യഹ ദിഖലാതാ ഹൈ കി കിസ് തരഹ ശുദ്ധ ഭക്ത ബനാ ജായ അന്യാഭിലാഷിതാ ശൂന്യം. ഇസ് ജഗത് മേ आने पर भी नित्य सिद्ध भक्त भौतिक भोग के प्रलोभन में नहीं आता. इससे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण महा भागवत भक्त प्रहलाद महाराज हैं, जो नित्य सिद्ध अर्थात महाभागवत थे. यद्यपि उनका जन्म नास्तिक हिरण्यकश्यप के परिवार में हुआ था, किंतु वे किसी तरह के भौतिक भोग के प्रति आसक्त नहीं थे. भगवान चाहते थे कि प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त के लक्षण प्रकट करें, अतएव उनने भौतिक वर स्वीकार करने के लिए कुशलता चाहा, किंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया, अपितु उन्होंने अपने निजी उदाहरण से शुद्ध भक्त के लक्षण प्रकट किए. दूसरे शब्द में भगवान न तो स्वयं अपने शुद्ध भक्त को इस भौतिक संसार में भेजना चाहते हैं, न ही भक्त को यहां आने में कोई भौतिक प्रयोजन रखता है. जब भगवान स्वयं इस भौतिक जगत में अवतार के रूप में आते हैं तो वे भौतिक परिवेश में आकृष्ट नहीं होते और उन्हें भौतिक कार्य से कोई मतलब नहीं रहता. फिर भी वे अपने निजी उदाहरण से सामान्य भक्त को भक्त बनाना सिखाते हैं. इसी प्रकार जो भक्त परम भगवान के आदेश में यहाँ आता है, यह भी अपने निजी आचरण से दिखाता है कि शुद्ध भक्त कैसे बना जाए. इसलिए शुद्ध भक्त सभी जीवों के लिए जिनमें ब्रह्मा भी सम्मिलित है व्यवहारिक उदाहरण होता है. सो भृत्य लक्षण जिज्ञासुर और भक्त कामे सो चदये. भृत्य लक्षण, भृत्य सभी नहीं बन सकते, भृत्य ही सच्चा भक्त सच्चे दास भगवान को आयत्त में रखता है. भगवान भक्तों से ही कंट्रोल होते हैं. इसलिए भगवान कहते हैं आदित्य पुराण में, आदित्य पुराण में भगवान ने कहा मदभक्तो वल्लभजस्य, मदभक्तो वल्लभजस्य समे वल्लभतांग मम, मत्परो वल्लभ नास्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम्. भगवान कहते हैं मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं. क्या सत्य है? ना जो मुझे स्नेह करे, मुझे प्रेम करे, मेरे भजन में लग जाए, मेरे नाम को नित्य जिह्वाग्र में मेरा नाम का नाम संकीर्तन करे, मैं उससे जितना प्रसन्न होता हूं उससे अधिक गुण प्रसन्न होता हूं जो मेरे भक्तों का गुणगान में लगा है, मेरे भक्तों की सेवा करते हैं। मद भक्त वल्लभजस्य समे वल्लभतांग मम मत्परो वल्लभ नास्ति। इसलिए भक्तवत्सल भगवान प्रह्लाद से भी बंधे हुए हैं, हर दुख का साथ ठाकुर जी ने प्रह्लाद को दिया। यहां प्रश्न है प्रह्लाद कौन है? ना प्रह्लाद वो भक्त है, प्र शब्द में आता है उत्कृष्ट, प्र संस्कृत में प्र शब्द का अर्थ है उत्कृष्ट, जैसे प्रयागराज उत्कृष्ट सबसे अच्छा, आह्लाद श्रीमती राधारणी भगवान श्री कृष्ण के आह्लादिनी शक्ति, आह्लादिनी शक्ति प्लेजर पुटाजी, उसी प्रकार प्रह्लाद आह्लाद जो सभी को आनंद प्रदान करते हैं, जो भक्त सभी को आनंद प्रदान करते हैं वो प्रह्लाद है। देखो भक्त, आप सभी भी एक छोटे छोटे प्रह्लाद महाराज हो, नित्य प्रति ठाकुर जी को प्रणाम करते हो, ठाकुर जी की संकीर्तन करते हो, ठाकुर जी को ठाकुर जी के बारे में अन्य को समझाते हो। यही तो ठाकुर जी ने कहा, अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य विजुक्तानां योगक्षेम महाम्यहम्। उस भक्त के लिए ठाकुर जी उनके रना बैठना खाना समस्त प्रकार की दायित्व वहन करते हैं, परंतु वो कौन भक्त है? ना प्रह्लाद महाराज जैसे शुद्ध वा सिद्ध भक्त। इच्छामृत नाटक में, इच्छामृत नाटक में रामानुजाचार्य जी एक सुंदर अनोखा श्लोक लिखा। रामानुज जी बोलते हैं, शिरो मुंडितम तुंड मुंडितम चित्तं न मुंडितम तत् किंग मुंडितम सुष्टु साधु जस्यः चित्त मुंडितम। एंड चैतन्य महाप्रभु ने इसी संदर्भ में कहा, चेतो दर्पण मार्जनम, शिक्षाष्टक का प्रथम श्लोक, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादाभाग्नि निर्वापणम श्रेय कौरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म सपनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। श्रीकृष्ण संकीर्तन में लगा हुआ भक्त का रूप बा व्यवहार ऐसा नहीं होता जैसे जैसे रामानुजाचार्य कहते हैं। शिरो मुंडितम, हमने शिरो का मुंडन किया, अभिमान रूपी जो सुंदर सा बाल है ठाकुर जी के चरणों में उसको समर्पित कर दिया। ठाकुर जी अभिमान नहीं चाहिए, भक्त अभिमान भक्ति बाधक है। तीन चीजों का ध्यान देना भक्ति जीवन में, अभिमानम, श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय, अभिमानम सुरापानम। भक्त की जीवन में अभिमान आ जाए, भगवान किसी की अभिमान को सहन नहीं करते, सुनर और लेटर भक्ति का भक्ति नाश हो जाता है अभिमान से। अभिमानम सुरापानम, ये अभिमान कैसा है? ना लिकर के समान, जैसे मनुष्य शराब को पान करने के बाद शुद्ध बुद्धि को खो जाता है, अभिमान में आने के बाद भक्त की भक्ति डगमगा लगता है, वो नहीं जानता वो क्या सोचता है क्या करता है। अभिमानम सुरापानम गौरवम रैरव समम गौरव सम्मान, जो सम्मान के भूखे हैं, एक आसन मुझे दिया उसको दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, मैं उससे बहुत बड़ा हूं। अरे क्या फर्क पड़ता, अगर मैं बड़ा भी हूं मेरे अनुज मेरे छोटे मेरे प्रिय भक्त आगे सम्मान ले लिया उससे तो हृदय खुल जाना चाहिए, पर हृदय संकुचित हो जाता है, मैं बड़ा हूं, मुझे नहीं दे करके उसको पहले क्यों दे दिया, ये अनर्थ है भक्ति जीवन का। इसको गौरव कहते हैं, मुझे आना चाहिए। सम्मान जबरदस्ती नहीं लिया जाता, सम्मान स्नेह से आता है। ऐसी सेवा करो, ऐसे बोली बोलो, ऐसी भगवान की भक्ति करो, सम्मान तुम्हारे पीछे दौड़े, तुम सम्मान के भूखे ना हो। और जो सम्मान के भूख के लिए दौड़ते हैं उनको ये शास्त्रों ने क्या कहा, रौरव समम, रौरव नरक की एक बड़ा नरक है। श्रीमद् भागवत में 28 नरकों की वर्णन है, उसमें रौरव नरक एक बड़ा नरक है, वो नरक के समान है, जीव को अधपतन की ओर ले जाता है। और प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा त्रयंग त्यक्त्वा हरिम भजे, और जो प्रतिष्ठा की भाव है, मैं हूं, मेरे बिना और कोई नहीं है, बड़े बड़े प्रतिष्ठा हमारे एक आचार्य हुए, बड़े प्रतिष्ठा में वो निवास करते थे, बहुत बड़ा एक मंदिर बनाने की स्वप्न देखा, किंतु आज वो मंदिर कहां है, वो स्वयं ही नहीं रहे तो मंदिर क्या। ऐसे प्रतिष्ठा की भाव हम क्यों ले, और ऐसी प्रतिष्ठा की भाव जो भक्त जीवन में रखता है उसको शास्त्र ने कहा सुकरी विष्ठा। सुकर पुंगलिंग वाचक है, और सुकरी मतलब सुअर, और सुकरी जो स्त्री फीमेल सुकरी है उसकी टट्टी के समान है प्रतिष्ठा की जो भाव, क्योंकि प्रतिष्ठा बहुत मन में होता है, सबको दिखाई नहीं पड़ता वो भाव। इसलिए त्रयंग त्यक्त्वा, तीन को छोड़ करके जीव को हरि भजन में लगना चाहिए, तभी प्रहलाद महाराज जैसी स्थिति आ सकता है। मैं बार बार कहता हूं भक्ति निर्भीक है, भक्ति किसी की सहारा में नहीं चलता। जब भक्त भक्ति और भगवान ये तीनों एक ही रेखा पर अवस्थित है, भक्त भक्ति की अभ्यास करता है फिर भगवान उच्च के पकड़ में आ जाते हैं। इसलिए सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या, अरे कितने कुरूप हुआ हो वो भक्त, कितने गरीब कुल का हुआ हो भक्त, कितने नीच कुल के जन्म लिया हुआ भक्त, वो भक्त महान है। अस्वस्थ महद वृक्षो काकह विष्टा समुद्भव, गुणेन सर्वि पूज्यपि कुलेन किंग प्रयोजनम। मैं राजकुल का हूं, मैं ब्राह्मण कुल का हूं, मैं अमक हूं, मैं ऐसा हूं, ये जितनी प्रतिष्ठा ये सब भाव कुछ नहीं होता। देखो भगवान गीता में कहते हैं अस्वस्थ सर्व वृक्षाणम, मैं सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं, अस्वस्थ वृक्ष हूं। पर वो अस्वस्थ पेड़ का जन्म किससे होता है भक्त, अस्वस्थ सर्व वृक्षाणम काक विष्टा समुद्भव, कौवा की टट्टी से, बड़े बड़े प्रसाद में देखो अस्वस्थ के पेड़ उगते हैं, उसका जन्म कौवे की टट्टी से होता है, क्योंकि वो फल खा करके मल त्यागता है और उससे पेड़ की उत्पत्ति होता है। इसलिए गुणेन सर्वि पूज्यपि, जिसके पास गुण है वही पूज्य है, वही पूजे जाते हैं। और कुल गारिमा ठाकुर जी के सामने कोई मायने नहीं रखता, ठाकुर जी भक्ति के भूखे हैं, ज्ञान और गरिष्ठा की नहीं। इसलिए शुद्ध भक्त होने के लिए प्रभुपाद जी कहा करते थे जे मेरे भक्त जो हैं वो सब परमहंस है। क्यों, परमहंस बहुत बड़ा ऊंची स्थिति है भक्ति जीवन का, क्योंकि परमहंस को दर्शन करने से, दर्शन मात्रेन भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम हृदय में जागृत हो जाता है, वो परमहंस स्थिति है। इसलिए श्रीमद् भागवत की एंड में जब अध्याय समाप्ति होता है, द्वैपायन मुनि व्यासदेव लिखते हैं इति श्रीमते भागवते महापुराणे परमहंस संहितायाम, ये परमहंस की संहिता है, आप और हमारे लिए नहीं है। और परमहंस कौन है, ना श्वेत कृष्ण ना बकह श्वेत, हंस श्वेत को भेद हंस बकयो, हंस भी देखने के लिए सफेद है और बगुला भी देखने के लिए सफेद है, पर नीर क्षीरा विभेदेशु हंस हंस बकबक। जब दूध और पानी को अलग करने की बात आ जाए सामने, बगुला देखते रह जाता है, किंतु हंस पानी को निकाल करके दूध को पी लेता है। वो परमंश है, संसार की मल में उनकी कोई रुचि नहीं है, उसको वो लंग जाते हैं। और जिस प्रकार हंस सरोवर में कमल दल के अंदर कूच करके आनंदता को प्राप्त करता है, ऐसे ही परमंश शुद्ध भक्त, नित्य सिद्ध भक्त केवल कीर्तन में लगे रहते हैं, सभी की कल्याण करते हैं, वो किसी की मंद चिंता नहीं करते। देखो भक्त, हमारा प्रथम बात था वृत्तीय लक्षण। यहां पर मैं लक्षण के लिए आता हूं, वृत्ति की थोड़ी सी चर्चा बाद में करेंगे। एनीथिंग, एक धनाढ्य परिवार के एक व्यक्ति है, उसको हम कैसे पहचानते हैं भक्त? उसके कुछ लक्षण होते हैं। बड़े से एक्सपेंसिव कार होगा, बहुत बड़ा घर होगा, एक वस्त्र का दाम 20-25 हजार रुपया होगा, बहुत बड़ा धनी परिवार का बेटा है ये, उसके लक्षण बताता है। एक रोगी है, रोगी को हम कैसे, डॉक्टर रोगी की निरीक्षण कैसे करते हैं? उसकी सिम्टम्स है, तुम्हारा ये सिम्टम होता है, डॉक्टर जी देखो मैं खांसते रहता हूं और खांसी करते करते मुझे खून आ गया, वो बोलते तुमको इसी प्रकार की रोग हुआ है, उसके लिए ट्रीटमेंट लो, क्योंकि लक्षण से भी रोग की निर्णय होता है। ठीक है, इसी प्रकार भक्त का भी तो कुछ लक्षण होता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछ बैठा, स्थित प्रज्ञ सका भाषा समाधि तस्य केशव स्थितधि किम प्रभासेत किम आसत प्रतीत किम। हे ठाकुर जी ये बताइए, जिसकी बुद्धि आपकी चरण में स्थिर है, वो व्यक्ति कैसे बैठता है, कैसे चलता है और कैसे बोलता है? ये थ्री थिंग्स इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, कैसे बैठना कैसे चलना, ये सब संस्कार से आता है। संस्कार इसी को कहते हैं, पाप पिता माता बैठना सिखाते हैं, गुरुजन को कैसे वाक्य करना, कैसे वाक्य में संबोधन करना, वो संस्कार सिखाता है। संस्कार विहीन व्यक्ति बहुत अपराध कर बैठता है। इसलिए ऐसी भक्ति करने के लिए भक्त के कुछ लक्षण, श्रीमद् भागवत थर्ड कैंटो श्रीमद् भागवतम, कपिल मुनि ने देवहूति माता को बताते हुए कहते हैं, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांता साधु साधु भूषण। ये गुण साधु की आभूषण है, आभूषण पहनने की जरूरत नहीं है। हस्तस्य भूषण दानम सत्यकंठस्य भूषणम स्वत्रस्य भूषणम शास्त्रम भूषण किं प्रयोजनम। वो बड़े बड़े आभूषण की आवश्यकता क्या है? जब भक्त सत्य बोलना जानता है, कंठ से वो सत्य ही बोलता है, उसके लिए नेकलेस की जरूरत नहीं है। हस्तस्य भूषणम दानम, देखो भक्त, प्रहलाद महाराज जैसे भक्त बनने के लिए कुछ बात तो करना पड़ेगा। जो भक्त हमेशा हिडन में विश्वास रखता है, हमारे पास तीन वस्त्र है, हम दो वस्त्र को छुपाया, भक्त पांच है, पर दो, एक व्यक्ति तो तीन वस्त्र को लेकर छुपा दिया है, दो भक्त कहां जाएगा? वो तरसेगा ना, मेरे पास है नहीं कमांडर जी, मेरे पास और धोती नहीं है। पर कमांडर बोले, 10 धोती तो मैंने दिया था भक्तों के लिए, कहां गया? उनमें से एक भक्त तीन को छुपाया। इसलिए प्रकृति जो है भगवान के अंडर में चलता है, वो सभी को समभाव में देता है। प्रकृति सभी को समभाव में, वर्षा होता है शत्रु मित्र में भेद नहीं करता, पेड़ फल फलाता है वो नहीं बोलता तू शत्रु है मित्र है, वो समभाव में। किंतु आज का मानव ऐसे हो चुका है कि वो प्रकृति को विकृत बना देता है, चोरी करना, छुपा लेना। किंतु कुछ लोग तुम मर जाओ, हमें चिंता नहीं है। आज हमारे जो वेजिटेबल्स है, खाने पीने की वस्तु है, वो बहुत हाई रेट में जाता है, गरीब लोग कैसे खाएगा? हाँ, परंतु ये स्थिति क्यों आता है? क्योंकि गोदाम में जो बड़े लोग है वो पैसा के लालच में उसको छुपा देते हैं, मार्केट में लेके आते नहीं है। जब समय आएगा उसको निकालेंगे, प्रॉफिट बनाएंगे। ये विकृति है। तुम दुखी रहो, मैं सुखी रहूं, ये वैष्णवता नहीं है। वैष्णव पर दुखी दुखी, मैं वैष्णव दुखी हो जाऊं पर तुम सुखी रहो। इसलिए एक वैष्णव ने, जगन्नाथ जी के बड़े भक्त, कहते हैं, आलोक भीतरे सलिता जथा निज को जाली। वैष्णव होना है, देखो वो दिया को, ठाकुर जी के सामने दिया सभी कर्मों के साक्षी है। दिया के बिना ठाकुर जी की दर्शन नहीं होता। पहले हम दिया जलाते हैं, पर दिया अपने को जला करके दूसरे को आलोक प्रदान करता है। तो जब तक वैष्णव अपने को नहीं जलाए, वो दूसरे के कल्याण कैसे कर सकता है? श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में जलदूत में गए अमेरिका, हार्ट अटैक भी आया, कितना कष्ट उठाया, कितने भक्तों ने कितने प्रकार के कष्ट दिए, सब सहने के बाद आज उनका जो फल है हम भोग रहे। इतना बड़ा मंदिर में बैठ करके सुंदर सा प्रसाद खा करके नाच कीर्तन कर रहे हैं, ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि नहीं है? किंतु उन्होंने कितना कष्ट उठाया, दिया जी से ना, स्वयं को जलाया, तभी तो दूसरे को प्रेम बांट पाया। इसलिए वैष्णव ऐसे होना चाहिए। हाँ, दिया दूसरी उदाहरण क्या दिया? ना आलोक भीतरे सलिता जथा निज को जाली, पर हित पाई जलद दिए निज को ढाली। जलद कहते बादल को, बादल का कोई स्वार्थ नहीं है, वो अपने को वर्षा देता है, पर किस लिए? ना जीव जगत के कल्याण के लिए, पेड़ पौधे फूल फल सब उसी से बनते हैं, पर अपना कोई भी स्वार्थ अपना नहीं है बादल का, बादल बरस जाता है। देखो वो वृक्ष का तीसरा उदाहरण, देखो वो वृक्ष का, वो वृक्ष सारा सनशाइन को ऊपर लेता है, गर्मी को, और पथिक को शीतलता प्रदान करता है, वो वैष्णव है। देखो भक्त, जब आप में वैष्णवी की रेखा खींचते हैं, ये भृगु महाराज की चरण चिन्ह है, भृगु ऋषि जो पैर मारा ठाकुर जी की छाती पर, श्रीवत्सल लांछन ठाकुर जी के नाम हुआ, विष्णु नारायण कृष्ण वैकुंठ विष्टर स्रवस दामोदर ऋषिकेश केशव माधव शोभु दैतारी पुंडरीकाक्ष गोविंद गरुड़ध्वज पीताम्बर अच्युत सारंगीन विश्वकसेन जनार्दन उपेन्द्र इंद्रावरज चक्रपाणी चतुर्भुज पद्मनाभ मधुरीपुर वासुदेव त्रिविक्रम देवकीनंदन सौरी श्रीपति पुरुषोत्तम बनमाली बलिध्वंसी कंसरात्रिर अधोक्षज। ये पवित्र नाम को लेकर के भक्त जीता है, पर भक्त की भक्ति इसी का परिचय है, ये लक्षण है। इसलिए मैंने पहले उस स्तोत्र को शुरू किया था, जे सकल भुवन मध्य, सभी भुवन में, चतुर्दश ब्रह्मांड में यदि निर्धन भक्त है वो भी ग्लोरियस है। क्यों? ना जिसके हृदय में भक्ति देवी विराजमान है। अब भक्ति जब ही जब विराजमान होते हैं, भगवान गोलक में नहीं रह पाते। सर्वथा विहाय प्रविश्यन्ति हृदिस्तेषां भक्ति सूत्रोपनब्धा। भक्ति रूपी धागा में गुंथ जा करके जब भगवान हृदय में उतरते हैं, पर भगवान को निकालने के बाद भी भगवान निकल नहीं सकते, ये भगवान बोलते हैं। ये पद्म पुराण का स्टेटमेंट है, सकल भुवन मध्य पद्म पुराण, वैष्णव वरेण्य ग्रंथ सभी को पढ़ना चाहिए। और बाकी रहा काम, कामे तो काम रूपी जो बीज है, वो मनुष्य को बहुत सताता है। काम क्रोध लोभ मोह देहे तिष्ठन्ति तस्करा आत्मज्ञानम प्रहारार्थम तस्मात् जागृही जागृही। हे मानव, कब तक सोते रहोगे? तुम्हें मालूम नहीं, जब तुम सो गए थे, जिस समय तुम जागृत नहीं थे, चार चोर तुम्हारा शरीर रूपी मंदिर में, घर के अंदर घुस चुके हैं। कौन? ना काम, फिर क्या? ना क्रोध, लोभ और मोह। लोभ पाप का पिताजी है। जब मनुष्य लोभाग्रस्त होता है, वो कोई भी पाप कार्य कर सकता है, क्योंकि लोभ करा लेता है। काम क्रोध लोभ मोह, ये चार ऐसे तो षडशत्रु है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये छह प्रकार के शत्रु मनुष्य को सताता है, किंतु इनमें से चार बहुत प्रधान है। काम क्रोध लोभ मोह। देहे तिष्ठन्ति तस्करा, तस्करा कहते हैं चोर को, तस्कर चोर। जब हम सो गए थे, ये चार चोर घर के अंदर घुस गए, पर इनको निकाले कैसे? शास्त्र कहता है आत्मज्ञानम प्रहारार्थम, आत्म ज्ञान रूपी लाठी को लेकर के उनके ऊपर प्रहार करो, तभी वो निकल सकते हैं। एक बार प्रश्न है, जो नित्य सिद्ध की बात हो रहे हैं ना, प्रभुपाद जी कहते हैं नित्य सिद्ध वो आत्मज्ञानी पुरुष है। बोले कैसे? ना जैसे नारियल की पेड़ है, उसमें से जब नारियल पकता है ऐसे तो गिरता है, पर उससे तोड़ लो तो तुरंत क्या होता है? ना नारियल सूखना प्रारंभ करता है, डिटेच्ड फ्रॉम उसकी जो ऊपरी भाग की जो कवर है, उससे वो अलग होना चाहता है धीरे धीरे धीरे। जब नारियल को आप सेक करो, छह महीना के बाद देखो आवाज आता है, उसमें और पानी नहीं है। जो नारियल है उसकी ऊपरी आवरण से वो बिल्कुल अपने को अलग कर चुका है, जिसको हम उड़ीसा भाषा में कहते खुरुड़ी नड़िया। ओके, तो उसको बजाओ, सेक करो, वो बिल्कुल अलग है। ही इज डिटेच फ्रॉम द ऊपरी कवर। उसी प्रकार भक्त जो है संसार में रहकर भी वो संसार से बिल्कुल अलग है, उससे कोई लेना और देना भी नहीं है, इसलिए वो भौतिक इच्छा नहीं करते। और जो भौतिक इच्छा करते भी हैं जो वक्त, फिर उसको संभाल नहीं पाते। भारतवर्ष की हजारों माओ की बहुत प्रॉब्लम है, किसको पति की, किसको धन की, किसको बेटा की, किसको बेटी की। मंदिर आकर सब रोते, ठाकुर जी मुझे ये दे दो, मेरे कन्या की शादी करा दो। अरे बिना मांगे भी कुछ हुआ है? आपने तो कभी बुराई मांगा नहीं था ठाकुर जी से, पर जीवन में कितने बुरे आ गया, आया कि नहीं? पर ठाकुर जी से मांगना ऊंची भक्ति नहीं है, वो निम्न भक्ति है, क्योंकि ठाकुर जी अंतर्यामी है, अंतर के स्वामी है, हृदय के अंदर बैठ करके वो जानते हैं मेरी भक्त को क्या चाहिए। जैसे छोटा सा बालक जब रोता है, वो क्यों रोता है? भूख लगा, माँ उसको खाना खिलाती है, सर्दी आया गर्म कपड़ा खरीद कर देते, बच्चे को बोलना नहीं पड़ता, बच्चा केवल रोता है। उसी प्रकार पिता अहम स जगतो, माता धाता पिता मह गद्यो अहम, पवित्रोमकार रुक्ष्यामि यजुरी वचः। मैं इस संसार का पिता हूँ, मैं इस संसार का माता हूँ, मैं इस संसार की रक्षा करने वाला विधाता पुरुष हूँ। तो पिता माता को तो बच्चा कुछ मांगा नहीं, वो अपने दे देते हैं। तो हृदय में अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण जानते हैं मेरे बच्चे को क्या चाहिए, वो पहले ही तत्पर रहते हैं, उन्हें मांगने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा किए, उनमें से एक पुस्तक को अध्ययन किए, जिस पुस्तक में ये वर्णन था कैवल्यम नरकायते, वो कैवल्य, कैवल्य शब्द का अर्थ है मुक्ति। उन वो भक्त को मुक्ति भी नहीं चाहिए, वो मुक्ति को भी नरकायते नरक के समान सोच करके त्याग देता है, त्याग देता है। इसलिए कर्म, जो भी कर्म करो, देखो कर्म अकर्म भी कर्म, क्रियते इति कर्म, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, सो रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सब कर्म बंधन में आता है। किंतु जब कर्म अकर्म में बदल जाए, भोजन करना एक मानवीय वृत्ति है, भूख लागे तो हम भोजन करते हैं, पर उस भोजन को नैवेद्य के रूप में पहले ठाकुर जी को चढ़ा करके जब ठाकुर जी उसको दर्शन करते हैं, उसे वो प्रसाद बन जाता है। और प्रसादस्तु प्रसन्नता, और प्रसाद ही केवल आनंद दे सकता है। आज सारा समाज, सारा दुनिया शांति के पीछे घूम रहा है। प्रभु हम अशांत हैं, मेरा हृदय बड़ा अस्थिर रहता है, क्या करूं? भगवान ने द्वितीय अध्याय के आखिरी श्लोक में ये बात पहले बोल दिया है, 5000 साल पहले बोला। ठाकुर जी ने अर्जुन को समझाता है, ठाकुर जी क्या कहते हैं, न अपूर्णमान अचल प्रतिष्ठम समुद्र आप प्रवीशन्ति तद्वैतः अद्वैत कामायं प्रवीशन्ति सर्वे सह शांतिमाप्नोति न काम कामी। कामना में भरा हुआ व्यक्ति शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। शांति पेड़ का फल नहीं है, एक फल तोड़ो और खा लो व्यक्ति को शांति प्राप्त हो गया। शांति तपस्या का फल है। जैसे समुद्र में बहु नदियों की पानी भरने पर भी समुद्र स्थिर है, उसी प्रकार बहु इच्छाओं के समावेश में रह करके जब भक्त इच्छाओं के अनुकूल में नहीं भागता, इच्छाओं को दमन करता है, तभी उस व्यक्ति को शांति प्रदान करता है। और काम के बारे में ठाकुर जी ने, अर्जुन ने भगवान से पूछा, ये ठाकुर जी ये बताइए, जीव नहीं चाहते हुए भी पाप कार्य के लिए मानो खींच जाता है और कर बैठता है, ऐसा क्यों? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये सब काम का परिणाम है, ये काम के कारण ये सब होता है। पर ये काम का निवास कहां है? काम का निवास कहां है? ना इंद्रियों में, ये काम छुपा रहता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, ये काम बड़ा शत्रु है। अब्रुतम ज्ञानमेतेन ज्ञानीनो नित्य वैरिणम काम रूपेण कौन्तेय दुष्परेण अनल। अनल कहते हैं अग्नि को। ये जीव मनुष्य को आग के समान जलाता रहता है। काम भी शरीर में भूख के समान है। जैसे भूख लगे हम काम खाते हैं, पर जब एक सेक्स अपोजिट सेक्स की सामना करता है, वो अग्नि प्रज्वलित हो जाता है शरीर में। इसलिए स्पेशली 2000 ब्रह्मचर्य एंड सन्यासी, दे आर स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड, डोंट गो टू क्लोज, देयर इज अ डेंजर फॉर यू। क्यों? ना भगवान ने इसके 3 उदाहरण दिया। भगवान कहते हैं, जैसे धुआं के अंदर आग, स्मोक के अंदर फायर छुपा रहता है, भस्म के अंदर आग छुपा रहता है, फू मारो फिर वो प्रज्वलित होता है। दूसरा उदाहरण दिया, जैसे धूल से मिरार, आईना, आईना के ऊपर धूल गिर जाए आप देख नहीं सकते, तो उसको साफ करना पड़ता है, पर साफ करते समय उसकी पीछे भी एक पारद लगा होता है, उसमें खरोचना आ जाए उसको भी ध्यान देना पड़ता है। मिरार बहुत नाजुक है, वो तोड़ ना जाए उसको भी ख्याल रखना पड़ता है। जब वो क्लीन हो जाए फिर अपना मुख, अपना फेस बड़ा क्लियरली दिखता है। जैसे धूल के अंदर मिरार छुपा रहता है, और जरायु के अंदर, मां के गर्भ में जरायु के अंदर वो छोटा सा बच्चा बंद पड़ा रहता है, ऐसे ही काम इंद्रियों के माध्यम से लगा रहता है। और इसी चरित्र में ठाकुर जी ने कहा, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोध अभिजायते क्रोधात भवति संगमोह संगमोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाश बुद्धिनाशाद प्रणश्यति। वो अंधकार के कोहर में गिर जाता है। जब काम की तृप्ति नहीं होता तब वो क्रोध का रूप ले लेता है। हाँ? पर आज तक काम से तृप्ति किसी को नहीं मिला है। काके शौचम द्यूत करे जो सत्यम। कौवा क्या कभी शुचिता को प्राप्त कर सकता है जब तक वो अपनी बेड हैबिट्स को त्याग ना दे? सबरे उठ करके वो किसी गंदगी में मुंह डालता है। काक शुचि नहीं हो सकता, पवित्र नहीं हो सकता। काके शौचम द्यूत करे जो सत्यम। जो जुआड़ी है, जिनको जुआ का आदत लगा हुआ है, वो सज्जा में सो करके अपनी प्रियतमा पत्नी को बोलता है, देख काल ये हार मुझे दे दे, मैं 10 दिन के अंदर तुझे वापस करूंगा, इससे अच्छा हार दूंगा। लेके वो जुआ खेलता है। वो कभी सच नहीं बोलता जब तक वो जुआ को ना छोड़े। उससे हम सत्य की अपेक्षा कैसे करें? काके शौचम द्यूत करे च सत्यम सर्पे क्षांति। सांप किसको क्षमा करे, इसका अपेक्षा करना मूर्खता नहीं है। सर्प को दिले खीर पान, खीर दाता र हरे प्राण। यदि सांप को कोई दूध पिलाता है, वो दूध पिलाने वाले व्यक्ति को डस लेता है, क्योंकि वो सर्प कुल में जन्म लिया है। इसलिए सर्प किसको क्षमा कर दे, ये अपेक्षा हम नहीं कर सकते। सर्प क्षांति स्त्रीषु कामोपशांति। स्त्री से बा नारी से आज तक काम से तृप्ति कोई नहीं पाया। हमारे इन दिनों में थे वो संत को रूप धारण करने वाले नहीं रहे, पर एक संत का ये कहना था, संत रूप धारण करके उनका ये कहना था, संभोग में समाधि। जितना मन करे भुगते जा भुगते जा भुगते जा भोग करो, एक दिन ऐसी स्थिति आएगी तुम्हारा मन समाधिस्थ हो जाएगा और तुम भोग के ओर लागोगे नहीं। पर ये तो टोटली कॉन्ट्रडिक्टरी ऑफ आवर स्क्रिप्चर। हमारा स्क्रिप्चर कहा, श्रीमद् भागवत कहता है घृतकुंभम, एक है अग्निकुंड और एक घृतकुंड। घृतकुंड पुरुष को कहा, जब पुरुष अपोजिट प्लेजर के शरीर में निकट जाता है तो वो पिघलने लगता है। परंतु आग जलता हो और उसके ऊपर घी कोई डाले, आग कैसे बंद हो सकता है? सारा जीवन अगर बीत जाए आग बंद नहीं होगा, आग भड़केगा। आग को बुझाने के लिए पानी चाहिए, घी नहीं, जलने वाला चीज नहीं, फ्यूल नहीं, आग भड़केगा। किंतु उन्होंने क्या कहा, संभोग में समाधि। इसी प्रकार प्रभुपाद जी उन भक्तों की बहुत निंदा करते हैं। किन भक्तों की? ना जो भक्त कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यह अस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान ही विमुडात्मा मिथ्याचार स उच्यते। भगवान ने सुंदर जिह्वा दिया, कीर्तन करो जम के। ना मौनी बाबा जी आए, 3 साल से बात नहीं करते। बड़े मौनी बाबा है, उनको बात कर, बात नहीं किए। अच्छा, बात आप नहीं करते हो हमने मान लिया। ठाकुर जी ने जिह्वा दिया, जिह्वा को आपने बंद कर दिया। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रिय को दबा करके रखना। दबा करके रखने से क्या होता है, ना दूसरे लोगों के ऊपर जो ज्ञानी नहीं है उनके ऊपर ये प्रभाव पड़ता है, सो ग्रेट सो नाइस, तो वो भ्रमित होता है। किंतु आपने जिह्वा बंद कर ली, बात करना बंद किया, पर जब आपको प्यास लगता है आप क्या करते हो, आप इशारा देते हो, थोड़ा पानी पिलाओ, नहीं तो लिख के देते हो, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। पर जो जिह्वा की कार्य है वो हाथ करता है, तो फिर फायदा क्या हुआ? एक इंद्रिय तो काम करता है ना, तो फिर लाभ क्या हुआ? पर ग्राम्य कथा विघात। इसलिए जो जो महात्मा गण प्रहलाद महाराज की स्थिति में आना चाहते हैं उनके लिए वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपपस्त वेगम एतन वेगानयो विषहेत धीर सर्वान अपीमं पृथ्वीं सशिष्यात्। ये छह आवेग को प्रथम है वाचा, इसके ऊपर कभी और चर्चा करेंगे, हम लेट हो रहे हैं। वाचा, इन छह आवेग को जिसने दमन किया, रोका, वो सभी पृथ्वी को शिष्य बनाने में समर्थ है। किंतु कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, कर्मेन्द्रियों को दबा करके दूसरे के मन में ये प्रभाव डाले जो मैं कितना महान हूं, पर मन में विषय की चिंता करे, ये गलत है। भगवान उस स्थिति को पाखंडता कहा। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, यह अस्ते मनसा स्मरन, इंद्रियार्थानि ही विमूढ़ आत्मा, वो मूर्ख है, विमूढ़ है, मिथ्याचार सह उच्यते, वो मिथ्याचार कहलाता है, ढोंगी। इसलिए ऑनेस्टी इज द मास्टर की ऑफ द लाइफ। प्रत्येक कार्य में ऑनेस्टी को सामने, हम भक्त हैं, ऑनेस्ट से कुछ तकलीफ हुआ, देखो छह चीज में प्रेम बढ़ता है, ददाती प्रत्यगृहति। एक भक्त, देखो ये सच्चा परिवार है, मंदिर में आप लोग रहते हो, ठाकुर जी के सामने रहते हो, यही सत्य है, और आप तुम जो भी देखते हो वो सब धोखा है। प्रहलाद महाराज ने दैत्य बालकों से एक ही बात कहा, पिताजी को एक ही बात कहा, मतीर्ण कृष्णे परत सुतवा मिथोभिपद्येत गृह व्रतानम अदंत गोभीर्विशितम विशीतम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानम। हे पिताजी मेरे, मतीर्ण कृष्णे, जिसका मन भगवान कृष्ण में नहीं है, वो इस परम तत्व को, विष्णु नाम को, कृष्ण नाम को, उनकी महिमा को कैसे समझ सकता है। हे पिताजी, ये संसार की व्यक्तित्व जैसे गन्ना है, गन्ना को हम चर्बण करते हैं, उससे कितना मीठा रस निकलता है, पर चर्बण करते करते उसको हम फेंकते हैं। अगर कोई व्यक्ति वो फेंका हुआ गन्ना को उठा करके चूसे, उससे क्या रस निकलेगा। तो जन्म जन्मांतर में हम सब इस कार्य को करके आए हैं, सब करके आए हैं, और ये दुर्लभ देह को प्राप्त करके यदि उसी के पीछे भागे, तो फिर वो पशु और मानव में क्या अंतर है। ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मृगा कहते पशु को, वो मनुष्य के रूप लेकर के पशु जैसे आचरण करता है। बोले कैसे, ना जिसके पास ऐसांग न विद्या, वो विद्या नहीं है। और प्रहलाद महाराज कहते हैं, बालके मोर बोलो करो बेलो हूं गोविंद सुमोर। ए बालक, मेरा कहा ध्यान से सुनो, प्लीज लिसन टू मी अटेंटिवली। अभी अभी इस समय भगवत नाम को लेना शुरू करो। बाल्य यौवन वृद्धार्थ विष्णु पुराण, बाल्य यौवन वृद्धार्थ देह भागैर संयुतः बाल्ये क्रीडन का सक्ता यौवने विषयान मुखा अज्ञाने अंतसक्ताश्च वार्धक्यं समुपस्थितं तस्मात् बाल्ये विवेकात्मा एतत् श्रेयसी सदा। बाल्य यौवन वृद्धार्थै देह भावैर संयुत, वो बाल्यकाल, वो यौवन और बुढ़ापा में कब आप करोगे भगवत भक्ति, उसे छोड़ करके अभी अभी इसी समय से भगवत परायण हो जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तभी है मुक्त सिद्ध की स्थिति आ सकता है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा दो प्रश्न है। एक प्रश्न है, अब बोले जो मौन अवतार जो लेते, जो मुनि ऋषि माने जो मौन अवतार रहते, वो 5 साल 10 साल 12 साल मौन अवतार लेते, किंतु भक्त हमारा तो कीर्तन करते, और कुछ कुछ भक्त में देख रहा हूँ खाने के समय मौन अवतार लेते, अच्छा ये क्या ढंगी है ना ये ठीक है?
क्या हुआ क्या हुआ?
जो खाने के समय कोई कई भक्त में देख रहा हो मौन बता लेते, कुछ बात नहीं करते। हाँ, जो खाने के समय देखते कुछ मौन बता रहे थे, मैंने कुछ बोलते नहीं, मेरे को ये चाहिए वो दिखाते हैं। अच्छा ये क्या ढंगी है ना ये ठीक ही है?
देखो, नॉर्मल रूप में जब हम प्रसाद सेवन करते हैं मौन रहना बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रसाद भी भगवान से भिन्न नहीं है, वो साक्षात गोविंद है प्रसाद, इसलिए वो प्रसाद कहलाता है प्रसन्नता। जब हम भोजन प्रसाद ग्रहण करें प्रयास करें बात नहीं करना, वो अच्छा है, परंतु हम एक साथ 100-200 भक्त बैठे हुए हैं प्रसाद खाते हैं, तो कोई चीज का आवश्यक पड़ा हम हाथ उठाएं, पर कोई ना कोई आपके पास आएगा फिर हम मुंह खुले, पर वो अपराध नहीं है, वो नेसेसिटी है। समझ में आया? नेसेसिटी क्या है? एक आवश्यकता है और एक लग्जरी है। समझ में आया? जैसे कि हम प्लेन में आते हैं, हम इकोनॉमी क्लास में आए तो थोड़ा कम पैसा पड़ता है, पर प्लेन वही प्लेन है, पर हम फर्स्ट क्लास में जाएं उससे 5 गुना ज्यादा देना पड़ता है, पर कोई व्यक्ति 5 गुना ज्यादा दे के आए, समझ में आया? वो दोषपूर्ण है। आवश्यक क्या है? अनावश्यक चीज क्यों करें? किंतु वहां पर शांति से शांति भंग नाम प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, परंतु कोई चीज के आवश्यक पड़ गया तो हम हाथ उठा के अगर बोले, मुझे नहीं लगता वो अपराध है, बा आपका भाव कुछ बड़ा अपराध हो गया नो, क्योंकि वो नेसेसिटी है। अगर हम नहीं मांगे कोई हमको देख नहीं सकता, हम तो 200 व्यक्ति के बीच में बैठे हुए हैं, हमको क्या चाहिए? और जो प्रसाद देता है उसका भी ये कर्तव्य है किसी को मांगने ना दे। प्रसाद सर्विस की टेक्निक वही है, सेवा का वही अर्थ है। सेवक कौन है? मैं उसके ऊपर आया नहीं, वृत्ति के ऊपर। सेवक वही है जो प्रभु क्या चाहता है उससे पहले समझ करके वो चीज को सामने रख दे, वही सेवक है। हनुमान दास भक्त का सबसे बड़ा उदाहरण है। और जब रावण के पुत्र ने हनुमान को बांध करके ले गए, मेघनाद ने ले गया हनुमान, रावण बैठे हुए थे, चतुर्वेदों की ज्ञाता विश्वसवा नंदन, विश्वसवा ऋषि के नंदन रावण, वो देखा हनुमान आया हुआ है बंद करके, पहले प्रथम प्रश्न पूछा, कहते कपे हे वानरराज तुम कौन हो? हनुमान जी चकरे गए, हनुमान सोचने लगे, रावण इतना बड़ा पंडित विद्वान, मैं उसको उत्तर क्या दूं, मैं कौन हूं? वो नहीं जानते थे मैं कौन हूं इसका उत्तर क्या दे। बहुत सोचा, लक्ष्मी जी प्रकट हुई ब्रेन के ऊपर, हनुमान जी कहा, दासो अहम कौशलेन्द्रियस्य, मैं भगवान राम और लक्ष्मण का दास हूं। जिबेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, दैट इज अहम, हमारा ओरिजिनल स्थिति वही है। और हनुमान जी ने यही बताया रावण को, जे मैं राम और लक्ष्मण का दास हूं। रावण बड़े क्रोध से बोला, अरे उन भिखारियों का दास है तू जो जंगल जंगल घूमते फिरते हैं, मेरा दास बन जा, मैं तुझे ये दे दूंगा वो दे दूंगा वो दे दूंगा। हनुमान ने क्या कहा, रावण मैं कौशलपति दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण का दास जरूर हूं, परंतु तू तो काम का दास है, क्रोध का दास है, लोभ का दास है, मैं वो दास नहीं हूं। इसलिए तो दूसरे की पत्नी को तूने चुराया, काम के ऊपर तेरा कंट्रोल नहीं है, क्रोध के ऊपर तेरा कंट्रोल नहीं है। इसलिए तो हम पहले कहा वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, वो दास है। भगवान राम बड़े सुंदर स्तुति में हमारे हमारे जगन्नाथ जी के भक्त लोग लिखते हैं, जे भगवान राम लक्ष्मण और जानकी माता खड़े हैं, गंगा नदी को पार करेंगे और गंगा नदी में एक नाविक कुल में नहीं है, वो दूर में, क्योंकि उसको पहले पता लग गया ये जो आया है मेरे साथ बैठेगा ये एक पत्थर को नारी बना दिया है। उसको पहले ही पता था, क्योंकि भक्त है, मां ज्ञानी है, उसको पहले ही पता था जी ये अगर मेरे नौका में बैठेगा नारी हो जाएगा तो फिर मैं कहां जाऊं। बधिर नु वीर बोईला तहु धीवर सुनी लीणी पत्थर पत्थर अबड़ा बाली पड़ी तो चरणु आशंका पूजेणु नौका नायिका हेले बुड़ीब भेड़ा। भगवान राम पुकारते हैं, ओ केवट देख मैं जाना चाहता हूं, केवट सुनता नहीं है, वो आना नहीं चाहता। भगवान कहते हैं हे केवट यदि तेरे कान खराब हुए हैं तो जो श्रवण शक्ति की कमी हो गई है, सांप जैसे चक्षु श्रवा आंख से सुनता है, मेरे ओर देख तो मैं क्या बोलता हूं, इधर आ। फाइनली केवट आया तो केवट हाथ जुड़ के ठाकुर जी को क्या बोलता है, बोलते ठाकुर जी ये चरण को ऐसे ही मत गिराओ, पहले मैं आपकी चरण को थोड़ा पखार दूं। बोले क्यों, बोले यही चरण के रज लाग के पत्थर एक नारी बन गया, अहल्या उतार हुआ। सारा वृत्ति में इसी नौका से चलाता हूं, मेरे पेट पालता हूं, यही मेरे ब्रेड बटर है। अगर आपकी चरण लाग करके ये औरत बन जाए, एक तो घर में है दूसरा औरत के लिए क्या करूं, आप थोड़ा रुको। तो उन्होंने उनकी चरण को पखारा और माता सीता अक्षण बैठ करके गंगा नदी पार हुए। और जब गंगा नदी के पार हुए, भगवान राम ने अपनी प्रियतमा पत्नी सीता जी की ओर देखा, कुछ बोला नहीं। मैं सेवा का के उदाहरण देता हूं, सेवक का अर्थ क्या है, सेविका की अर्थ क्या है, ये पत्नी कौन है, ना पत्नी वो होना चाहिए। पति ने आंखें फिरा के देखा, पर क्यों देखा वो पहले समझ जाती है, ठीक है। भगवान ये चाहते थे जब केवट ने परिश्रम किया है कि परिश्रम के मूल्य दूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो भगवान राम के पास ने उन्होंने सीता जी की ओर देखा और सीता जी अपनी अंगूठी को निकाल करके राम जी को दे दिया, कुछ बोला नहीं। देखो बोलने की आवश्यक नहीं पड़ा, वो पत्नी। कार्जे सुदासी करणेशु मंत्री रूपेशु लक्ष्मी समया धरित्री भोजेशु माता शयनेशु रंभा सड़कर्म चुकता कुल धर्म पत्नी। केवल पत्नी नहीं, कुल धर्म पत्नी, कुल का धर्म का धर्म परायण पत्नी है, सहा पत्नी है, वो पत्नी है। तब केवट बोला ठाकुर जी एक उपकार मेरे प्रति करना। बोले क्यों, बोले मैं जानता हूं मैं तो मल्हार इस नदी का हूं, आपको पार कर दिया, पर मैं जानता हूं आपका स्वभाव, आप संसार का कर्णधार हो, नाविक हो, संसार रूपी सागर का नौका हो। ठाकुर जी ये नदी उससे बहुत छोटा है, जब एक घट से प्राण निकले वो समुद्र को आप उद्धार तार देना, मेरा ये करना, भीख मांगा। कारुण्य भाव से भगवान को कहा। इसलिए भक्त को चाहिए भगवान के सामने खड़े होकर के दीनता से ऐसी पुकार करे, अहम हरे, हे हरे, अहम हरे, मैं जीवन में बहुत पाप किया हुआ हूं, मैं ये जानता हूं, मत सम पात की नास्ती भूमऊ, ये भूमि पर मेरे से बड़ा महापापी कोई नहीं है। और आप मत सम पात की नास्ती त्वत सम नास्ती पापोपहारी, आपके जैसे पाप को हरने वाले संसार में कोई नहीं है ठाकुर जी, इसलिए मेरे प्रति दया करना। अपराध सहस्राणी क्रियन्ते अहर्निशि मया, दासो अयम इति मां मत्वा क्षमस्व मधुसूदन। अहर्निशि दिन और रात में मन में भी मैं पाप कर बैठता हूं ठाकुर जी, बहुत पाप हो जाता है, कौन जाने अनजान में भी पाप हो जाता है। जो सामने दिखता है हो सकता है वो सत्य ना हो, बहुत चीज अर्ध सत्य में हम डिक्लेरेशन करते हैं। सूरज को हम इसी आंखों में देखते हैं, सूरज एक थाली जैसे लगता है, क्या उसकी स्थिति ऐसा है, वो पृथ्वी से कई गुण बड़ा है, पर हमारे आंखें वहां तक नहीं पहुंचती, पर हमारा आंखें देखता है सूरज है, पर वो पूर्ण सत्य नहीं है, सूरज इतना नहीं है, असीम है। इसलिए पूर्ण सत्य को जाने बिना अगर हम निष्कर्ष पर पहुंच गए अपराध हो सकता है, और शास्त्र में बहुत बहुत इसकी चरित्र है अपराध हुआ। इसलिए भक्त को ध्यान रखना पड़ेगा, दीन भाव से हम ठाकुर जी के पास जा करके ये सब करें। और राधा राज बिहार के जितने भक्त है वो हमारे अन्यथा शरणम नास्ति, हे ठाकुर जी आपको छोड़ के मेरे कोई दूसरा शरण नहीं है, न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जया न विद्या न वृत्तिर ममैव गतिस्तुम 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 गतितुम, तुम ही आप ही एकमात्र मेरे गति हो, ना पिता ना भर्ता ना माता ना पत्नी ना भृत्य, कोई मेरे साथ नहीं है। ऐसी दीनता से यदि हम ठाकुर जी को प्रार्थना करें, ठाकुर जी कृपा बरसते हैं, ददामि बुद्धि योगम, वो बुद्धि को शुद्ध करके अच्छा बुद्धि देते हैं, और उस बुद्धि से हम ठाकुर जी की चरण तक पहुंच सकते हैं। ठीक है,
हरे कृष्णा। और मेरा दूसरा प्रश्न है, आप बोले जो वैष्णव जो है पर दुखे दुखी पर सुखी सुखी, तो बाहर लोग जो दुखी है वो दुखी है, मेरे को कुछ नहीं मिला, काम धंधा नहीं मिला, चोरी करते कुछ मर्डर भी कर देते, अच्छा इसका दुखी में हमें दुखी है ना सुखी है ना इसका पिटाई करना।
देखो आपने प्रश्न पूछा पर ये सब गलत प्रश्न है।
देखो अब ये बोलेगे जो वैष्णव है पर दुखे दुखी और पर सुखी सुखी, अतः जो बाहर लोग जो रहते बाहर जगत में रहते वो काम धंधा नहीं करते, चोरी करते और मनुष्य भी मर्डर कर देते, तो हम देखा है यार तो मनुष्य मर्डर कर दिया वो चोरी भी करते, अच्छा इसका साथ हमें दुखी होगा ना सुखी होगा ना, इसको पिटाई करना पड़ेगा।
भगवान से प्रार्थना करो, जैसे कि जीसस ने जब क्रॉस में आए, जिन्होंने उनको क्रॉस में पीटा नेल मारा, जीसस ने क्या कहा, लॉर्ड प्लीज फॉरगिव देम दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है, हरिदास ठाकुर को जब 22 बाजार में पिटा गया, हरिदास ने वो जल्लादों के लिए क्या कहा, भगवान से प्रार्थना किया इनकी बुद्धि को सुधारो।
ये तो भक्त थे ना,
हम केवल प्रेयर कर सकते हैं परंतु उनका साथ दे नहीं सकते। हम जानते हैं, मैं पहले कहा कर्म अकर्म और विकर्म, विकर्म में ये सब आता है, उग्र कर्म सब जो शास्त्र में नहीं है, किसको मारना किसको काटना पेट के लिए, ठीक है ना। परंतु प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, और ये श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, सुबिंग बरा हो उष्ट्र खरेई संस्तुतः पुरुष पशु न यत् कर्ण पथपेतु जातु नाम गदाग्रजः। गधा क्या करता है, उसको अगर मालूम है जे सारा दिन काम करने के बाद मेरा जो मालिक है वो मुझे सूखा घास खिलाता है, पर घास तो सारा जगह इन्वॉल्व, मैं कहीं भी जाकर तो खा सकता हूं, पर वो आदमी का इतना सबरे शाम तक गधागिरी क्यों करूं, किंतु उसको बुद्धि नहीं है, ठीक है ना। भगवान कहते ददामी योगक्षेम महाम्यहम। आप लोग बताओ, ये मंदिर में आप लोग रहते हो, आप भी तो एक मनुष्य हो ना, बाहर के लोग जैसे, बेशक हमने काट लिया है बाल, वो थोड़ा अलग हो गए, पर हम तो वही मनुष्य है ना, हाथ पैर भूख क्यूदा सब वही है ना। क्या आपकी पेट नहीं भरता, सच कहना, सत्य कहना। ये मंदिर की प्रसाद की बराबरी कोई कर सकता है, मुझे पूछो मैं बताऊंगा। इस मंदिर में हम थे, राधा कृष्ण प्रभु हमारे पुराने भक्त में एक है, वो हनुमान प्रभु पुराने भक्त है, कमाल कृष्ण गोस्वामी, गिरिराज स्वामी, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जय तीर्थ प्रभु, ये सब अमोघ लीला दास, 300 डिबोटी दो दो घंटे तक जब कीर्तन करते थे हम, मैं आपको मेरा पैर देखूंगा, मैं पिकअप जैसे घूमता था, और वो कीर्तन देख करके हजारों भक्त मंदिर के बने थे केवल कीर्तन से। और वृंदावन में एक साधु आए, उसके नाम था वाल्मीकि दास, वो दीक्षा लिया हमारे मंदिर में, इतनी बड़े दाढ़ी लेकर के आए हुए थे, केवल नृत्य देख के बोले आप कौन हो, और हमने प्रचार किया। मैं कहा स्वामी जी अगर आप रहना चाहते हो यहाँ तो ऐसे आप रह नहीं सकते, आपको पूरा दाढ़ी काटना पड़ेगा। बोले ऐसे नाच देखने के लिए दाढ़ी तो किया, अपने को खत्म कर दूंगा, मैं रहूंगा इधर। उन्होंने पूरा दाढ़ी काट दिया, नहीं प्रभु जी, वाल्मीकि प्रभु वृंदावन से काटा। क्या आपके पेट नहीं भरता, सत्य कहो, प्रसाद नहीं खाते हो, तो फिर वो खाने के लिए मर्डर क्यों करे, किस लिए, क्योंकि वो ज्ञान है, ज्ञान विहीन है, अंधकार में भटके हुए हैं। तो अंधकार से अंधार में रहने वाला व्यक्ति वो अपने को देख नहीं सकता, तो दूसरे को कैसे देखेगा। इसलिए आप लोगों की जरूरत है, प्रत्येक घर घर में जाओ, और कैसे प्रचार करो, प्रचार के माध्यम में, दंते निधावय तृणकम, दांत में सूखा हुआ तृण को पकड़ करके जाओ, और मांस मछली खाने वाले व्यक्ति के घर में उसके चरण को पकड़ करके कहो, हे प्रभु आप बहुत अच्छे हो, ठाकुर जी ने दिव्य शरीर दिया, इतनी सुंदर आंखें दिया, मुख दिया, ताकत दिया, पर चैतन्य चंद्र चरणी कुरु काम लाभ। एक बार आपके मन को भगवान गौरांग महाप्रभु के चरण में निवेश करो, इसलिए मैं आया हूं। हाँ सभी व्यक्ति तो गुड रिस्पांस नहीं देंगे, पर प्रभुपाद जी की कहना है 10 दरवाजा हम खटकाए, उनमें से 2 व्यक्ति हमारा साथ जरूर देंगे, क्योंकि हमारा कार्य नहीं है, जगत की कार्य है, भगवान चैतन्य महाप्रभु का धर्म है, युग धर्म है, इसलिए हमें संकोच नहीं करना चाहिए। और जो पापी तापी जतो छिलो हरि नामे उद्धरिलो तार साखे जगाए माधाई। इसलिए हरिनाम संकीर्तन आवश्यक है, जपिले श्री कृष्ण नाम अपनी से तरे उच्च संकीर्तने पर उपकार करे। जगाए माधाई से लोग वो बढ़कर के पापी है, कितना नारी धर्षण करते थे, कितने लोग को खून करते थे, शराब पीते थे, पर उनका उद्धार हुआ, पर ये आपका जिम्मेदारी है। इसलिए तो प्रभुपाद जी के मंदिर में हम लोग है, ये अभी भविष्य आप लोग हो, इस मंदिर के आप लोग यंग हो, अभी तो हम वृद्ध की ओर जा रहे हैं, और शरीर निष्क्रिय होने लगा है, हम इतने ओर दौड़ नहीं सकते। एक दिन था 2 घंटा हम कीर्तन करते थे, नाच नाच के पसीना पसीना छूटता था, आज नाच करने से थोड़ा दर्द हो जाता है, वयस हो गया। इसलिए संकोच नहीं करो, जिस कार्य में आप लोग हो, आप लोग बहुत महान हो, आप लोगों के बराबरी कोई नहीं कर सकता, किंतु सभी का उद्धार ऐसे होगा जब आप नगर संकीर्तन में चित्कार करके कीर्तन करोगे, और पापियों के कान में वो स्वर गूंजेगा, कर्ण कहोर में ये जो सर्प है, षड़ शत्रु, वो सब निकल निकल के आएंगे, हृदय पवित्र होगा, समाश्रिताये पदपल्लव प्लवं महत्पदं पुण्ययशो मुरारे भवाम्बुधिं वत्सपदं परं पदं पदं पदम यत् विपदं न तेषां। जब कीर्तन करके जाओगे, लोग सुनोगे, लोग आपको आलिंगन करेंगे, कोई आपकी सेवा करेगा, वो बहुत पवित्र होंगे। ऐसे करते करते वो भगवान की चरण रूपी नौका का सहारा लेंगे और भगवत प्राप्ति उनको हो जाएगा। इसी प्रकार से तो हम भक्त बने। कोई प्रसाद खा के भक्त बना, कोई प्रचार करके भक्त बना, कोई नाच देख के भक्त बना, कोई पुस्तक पढ़ के भक्त बना, पर किसी ना किसी प्रकारेण भक्त होना चाहिए। चाहे स्टार्टिंग कहां से भी हो, मर्डर हमारा बड़ा हरिदास को देखो, बड़ा हरिदास प्रभु ना जो फिल्म बनाते उनको देखो, पहला जीवन उनका क्या था। पर मैं उनकी पासपोर्ट देखा, वो पासपोर्ट में अपना बाप का नहीं लिखा है उन्होंने, उन्होंने लिखा अभय चरण दे। वो प्रभुपाद जी को अपने पिता के नाम पर पासपोर्ट में लिख रखा है, पर वो भक्त बने ना। ब्रजहरि प्रभु को देखो, बिजनेसमैन थे, एक ऑफिस में काम करते थे, पढ़े लिखे हैं, पर एक दिन गोपाल कृष्ण महाराज उनको लेकर आए मंदिर में हैदराबाद से, और आज देखो प्रभु जी कहां पर है। चतुर्भुज प्रभु को देखो, वो बैंक का मैनेजर थे, मंदिर आते थे जाते थे, एक दिन प्रचार किया प्रभु जी बैंक में क्या करते हो, आज देखो उसी बैंक में टकला होके जाते हैं तिलक धारण करके, कोई संकोच नहीं। हनुमान प्रभु को देखो, आज तक भी गाते हैं, काल भी बोले प्रभु जी मैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं। 40-50 साल तो मंदिर में हो गया, और बाकी क्या रखा है, और कितना दिन जीना है। ये आनंद है, ये आनंद बाहर में नहीं है। मंदिर में एक भी भक्त जब आ जाए, उसे इतना प्यार दो, इतना स्नेह दो, और प्यार जीव से पहले जीव से शुरू होता है, ताकि वो पिता माता भाई बंधु ज्ञाती कुटुंब किसी को ना सोचे। गिरिराज स्वामी जब प्रभुपाद जी के भक्त बने, उनके पिताजी बहुत बड़े धनाढ्य परिवार के बिलंग करते थे, और वो बॉम्बे में रहा करते थे गिरिराज स्वामी प्रभुपाद जी के साथ, और उनके पिताजी आए बोले बेटे को लेने के लिए, तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा उनके पिताजी को, उनका कहा मैं आपके बेटे को रुक के नहीं रखा हूं, तो आप चाहो तो इनको ले जाओ। तो फिर गिरिराज स्वामी उनके पिताजी को क्या बोले, बोले नहीं मैं जाना नहीं चाहता हूं, मैं इनके साथ रहना चाहता हूं, और कुछ आपके पास पैसा है तो थोड़ा प्रभुपाद जी को दे जाओ। उन्होंने कुछ दे के गया, और गिरिराज स्वामी पिताजी के साथ नहीं गए, गिरिराज स्वामी पिताजी के साथ नहीं गए, वो पहले इस मंदिर के प्रेसिडेंट थे, पर आज अमेरिका में है। सो कहने का अर्थ यह है, जब भक्त के रस किसको लागे, ए रसो रू रसो नाही, गोविंद नाम में जब व्यक्ति रसिक बन जाए, संसार तुच्छ है, संसार मलबत दिखाई पड़ता है। इसलिए आप लोग महान हो, मंदिर को छोड़ करके हम जाएंगे ये कल्पना नहीं करना, कभी नहीं करना। और बाकी रहा, हम शादी करेंगे, पिता माता की सेवा करेंगे, हाँ पिता माता गुरु हैं, उनकी सेवा करना चाहिए। अगर 3-4 बच्चे हैं घर में तो वो पिता माता की सेवा करे, आप परम पिता की सेवा करो। जब पेट भर जाए तो सारा इंद्रिया नाच जाता है, रस खिल जाता है। पेड़ की जड़ में पानी डाल दिया जाए, पत्ते पत्ते में पानी पहुंच जाता है। और भगवान कृष्ण की सेवा हो जाए, 33 करोड़ देवता और देवियों का जगत की सेवा हो जाता है, क्योंकि सभी की स्रोत इन्हीं से जाता है। ठीक है, हरे कृष्ण।